पाठ 12 अध्याय 9 और 10।
जैसे जैसे हम लैव्य व्यवस्था अध्याय 9 को पढ़ते हैं, यह ईश्वर सिद्धांतों की एक पूरी विविधता को इंगित करता है, जिसे एक सरल और त्वरित पढ़ने से आसानी से अनदेखा किया जा सकता है। इसलिए जबकि हम अनुष्ठानों के विवरण पर अधिक समय नहीं बिताएंगे, हम इस बात पर अधिक बारीकी से विचार करेंगे कि ये अनुष्ठान हमें क्या सिखाने के लिए है।
अध्याय 9 में पुरोहिताई और तंबू का अभिषेक पूरा हो जाएगा और मूसा पृष्ठभूमि में चला जाएगा और पुजारी सभी निर्धारित संस्कारों और अनुष्ठानों के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को संभाल लेंगे। पुजारी के अभिषेक या अभिषेक की रस्में, जैसा कि अध्याय 8 में बताया गया है, ठीक 1 सप्ताह की अवधि के लिए चल रही है। इसका मतलब है कि अनुष्ठान प्रक्रियाओं की यह एक ही श्रृंखला 7 दिनों के लिए हर दिन दोहराई जाती है और उन्हें मूसा द्वारा संचालित किया जाता है, न कि हारून द्वारा, क्योंकि अभिषेक अवधि के अंत तक हारून और उसके बेटे पुजारी के रूप में अपने कर्तव्यों को शुरू करने के लिए अधिकृत नहीं है। यह काफी रोचक और अनोखा है कि यहोवा मूसा को अपने और लोगों के बीच और यहां तक कि परमेश्वर और पुरोहित वर्ग के बीच मध्यस्थ के रूप में इस्तेमाल करता है। जब मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू ने कार्यभार संभाला तो उसे मूसा की भूमिका विरासत में नहीं मिली। शायद यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि यहूदी आज भी मूसा का इतना सम्मान क्यों करते हैं। यहोवा ने यह स्पष्ट किया कि मूसा ने जो कुछ भी कहा वह परमेश्वर के अधिकार में किया गया था, कि मूसा ने जो कुछ भी कहा वह ऐसा था मानो परमेश्वर ने कहा हो। जाहिर है कि जंगल में 40 साल के दौरान मूसा ने जो कुछ भी कहा वह बाइबल में नहीं बताया गया है। हमें मूसा के बहुत कम शब्द मिलते हैं और हम यह भी पाते हैं कि मूसा ने जो भी आदेश दिया उसके पहले ये शब्द नहीं लिखे गए हैं और परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया। इसका मतलब यह है कि मूसा को हर बार किसी मामले से निपटने से पहले यहोवा से कोई प्रत्यक्ष रहस्योद्घाटन नहीं मिला। तो चलिए यहाँ सही तस्वीर देखते हैं, जबकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मूसा कभी कभी यहोवा के सीधे और विशिष्ट आदेशों पर काम कर रहा था, तो कभी कभी मूसा सामान्य निर्देशों और स्थापित सिद्धांतों पर काम कर रहा था जो यहोवा ने उसे समय समय पर सिखाए थे। इसलिए अधिकांश समय यह मूसा का अपना निर्णय था जो विभिन्न मामलों पर हो रहा था, और यहोवा कहता है कि लोगों को सभी मामलों पर मूसा के निर्णयों को इस तरह लेना था जैसे कि यह स्वयं परमेश्वर की ओर से हो। पवित्र शास्त्र में एकमात्र अन्य व्यक्ति जिसे इतना अविश्वसनीय अधिकार दिया गया था और जिसके हर कथन को अच्छा सुसमाचार के रूप में लिया जाना था, वह था यीशुआ, जो वास्तव में न केवल मध्यस्थ था बल्कि देह में परमेश्वर भी था। तो आइए हम मूसा को उसका हक दें और यहोवा द्वारा उसे दी गई शक्ति की लगभग अद्वितीय स्थिति को पहचानें। निश्चित रूप से पुराने नियम में उसकी तुलना करने वाला कोई नहीं है, लेकिन आइए हम 21वीं सदी के विश्वासियों के लिए मूसा के जीवन में बताए गए महत्वपूर्ण ईश्वर सिद्धांत को भी पहचाने। यह है कि कभी कभी ईश्वर हमें हमारे जीवन में किसी मामले पर अपनी विशिष्ट इच्छा को सीधे और स्पष्ट रूप से दिखाते हैं, लेकिन अधिक बार और सामान्य रूप से हमें अपने तरीके, व्यवस्था और आज्ञाओं के अनुसार वह हमें अपना निर्णय स्वयं करने देगा, और यदि हमने उसकी बात मानी है तो हम बुद्धिमानी से और सही तरीके से चुनाव करेंगे। हम अपने निर्णय पिता की इच्छा के अनुसार लेंगे और इसलिए उसकी इच्छा पूरी होगी, जैसा स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी।
आइए हम सब मिलकर लैव्य व्यवस्था अध्याय 9 पढ़ें।
लैव्य व्यवस्था अध्याय 9 पूरा पढ़ें। अध्याय 9 के पहले शब्द 8वें दिन है और यह उस दिन को संदर्भित करता है जब पुजारी वर्ग को आखिरकार यहोवा द्वारा नियुक्त अनुष्ठानों को तंबू के मैदान के अंदर करने के लिए सशक्त और अधिकृत किया जाएगा। अब मूसा अनुष्ठान नहीं करेगा, हारून पहला उच्च पुजारी अब ऐसा करने में सक्षम है, और हम जो देखते हैं वह यह है कि अनुष्ठानों का एक पूरा सेट, जिसमें आशम भेंट, प्रतिपूर्ति भेंट को छोड़कर लगभग हर तरह की बलि शामिल है, किया जाता है। भेंटों का यह सेट एक तरह से अनोखा है क्योंकि यह इज़राइल के नवगठित पुजारी वर्ग द्वारा किया जाने वाला सबसे पहला बलिदान अनुष्ठान है, इसलिए यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण घटना है और हमें समय में इस क्षण को पहचानने के लिए शायद अपनी बाइबल में एक विशेष चिन्ह बनाना चाहिए।
अब मैं एक ऐसी बात पर टिप्पणी करना चाहता हूं जो विवादास्पद और महत्वपूर्ण दोनों है। अभिषेक समारोह के इन 7 दिनों के दौरान बहुत सारे बलिदान हुए हैं और पीतल की वेदी पर बहुत सारी चीजें जलाई गई हैं। फिर भी यह केवल इस अध्याय के अंत में ही है कि हम देखते हैं कि प्रभु अपने हाथों से पीतल की वेदी की आग जलाते हैं, और जैसा कि हमें पहले ही तोरह में बताया जा चुका है और बाद में फिर से बताया जाएगा, इस आग को कभी भी बुझने नहीं देना चाहिए क्योंकि यह दिव्य आग है और केवल दिव्य आग का उपयोग बलिदान को जलाने के लिए किया जा सकता है। पुराने इब्रानी संतों के बीच आम सहमति यह है कि अभिषेक के उन 7 दिनों के दौरान जो कुछ भी हो रहा था वह एक तरह का ड्राई रन था। जिस आग का इस्तेमाल किया जा रहा था वह दिव्य आग नहीं थी, मनुष्यों ने इसे जलाया था, लेकिन इसे जिस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था उसके लिए परमेश्वर द्वारा स्वीकार्य माना गया था पुजारियों और तंबू का अभिषेक। हालांकि जब एक बार अभिषेक पूरा हो गया तब परमेश्वर ने वेदी पर पवित्र अग्नि से पुनः आग प्रज्वलित कर दी और उस क्षण के बाद से किसी भी मानव निर्मित आग का उपयोग बलि दिए गए पशुओं और अनाज को धुएं में बदलने के लिए नहीं किया जा सकता था क्योंकि अब उद्देश्य अलग था। दिलचस्प बात यह है कि जब हम कुछ समय बाद योम किप्पुर प्रायश्चित का दिन अनुष्ठानों का अध्ययन करते हैं तो बलिदानों की एक बहुत ही समान श्रृंखला पेश की जाती है, सिवाय इसके कि लेव्य व्यवस्था 9 के बलिदानों में योम किप्पुर की तरह कोई बलि का बकरा नहीं है और इसके स्थान पर हमें एक शांति बलिदान मिलता है, एक जेवा बलिदान। इसलिए जबकि योम किप्पुर एक ऐसा दिन है जिसे अत्यंत संयम और गंभीरता से मनाया जाना चाहिए, इजरायली पुरोहिती के आधिकारिक संचालन के इस पहले दिन को खुशी के रूप में माना जाता है।
पद 1 में हमें यह भी बताया गया है कि हारून और उसके बेटों के अलावा मूसा ने इन सबसे पहले पुरोहिती बलिदानों के अवसर पर इजरायल के बुजुर्गों को आमंत्रित किया था। मैंने आपको पिछले सप्ताह बताया था कि अक्सर जब हमें तोरह में यह शब्द मिलते हैं कि इज़राइल की पूरी मंडली को तंबू में आना था तो पूरी मंडली का मतलब हमेशा इज़राइल की पूरी आम आबादी नहीं होता था, बल्कि यह आम तौर पर लोगों के प्रतिनिधि होते थे जिन्हें बुजुर्ग कहा जाता था, या अन्य समय में वे लोग होते थे जिन्हें इज़राइल के पूर्ण नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। यहां यह विशेष रूप से बुजुर्गों इब्रानी जेकेनिम में शब्द का उपयोग करता है और इसने कुछ विद्वानों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि यह कैसे संभव है। मेरा मानना है कि इस मामले में केवल मुख्य बुजुर्ग ही आए थे, सैकड़ों बुजुर्ग रहे होंगे और बिना किसी संदेह के वे किसी तरह के पदानुक्रम में संगठित रहे होंगे, तो शायद यह केवल प्रबंधन चार्ट का शीर्ष छोर था जिसे इस विशिष्ट अवसर के लिए बुलाया गया था, लेकिन यह केवल विद्वानों की अटकलें हैं। पद 2 में कहा गया है कि बलि के जानवरों में से एक बछड़ा है। कुछ बाइबलों में बछड़े के स्थान पर बैल या युवा बैल लिखा होगा, वे सही होंगे क्योंकि बछड़े के लिए इब्रानी शब्द एगेल है जिसका अर्थ है नर बछड़ा। हमने कुछ सप्ताह पहले चर्चा की थी कि बलि के लिए 2 अलग अलग श्रेणियों के बैलों का उपयोग किया जाता था, युवा बैल और वयस्क बैल। एक वयस्क बैल अधिक मूल्यवान होता है। एक युवा बैल जिसे यहां एगेल कहा जाता है का अर्थ है कि वह 1 वर्ष का है। एक वयस्क बैल की आयु 3 वर्ष होनी चाहिए। यह दिलचस्प है कि इब्रानी शब्द एगेल का उपयोग यहां किया गया है क्योंकि लेव्य व्यवस्था में युवा बलि बैल को एगेल के रूप में संदर्भित करना सामान्य नहीं है, बल्कि इसे आमतौर पर बेन पार कहा जाता है जिसका अर्थ है युवा बैल। शायद हमें इस बात का सुराग मिलता है कि इस पद में एगेल शब्द का यह असामान्य उपयोग क्यों मौजूद है, इस तथ्य से कि कुख्यात स्वर्ण बछरा जिसे हारून और उसके बेटों ने कुछ सप्ताह पहले ही बनाने में मदद की थी को भी एगेल कहा जाता था। ऐसा लगता है कि परमेश्वर यहां एक बात कह रहे थे, एक संबंध बना रहे थे। और हारून और उसके बेटों को सोने के बछड़े की घटना के बारे में याद दिला रहे थे और उन्हें परमेश्वर की शुद्ध उपासना की व्यवस्था और मिस की झूठी उपासना की मूर्ति पूजक व्यवस्था के बीच का अंतर दिखा रहे थे, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था में जानवर को कभी भी मनुष्य से ऊपर मानकर पूजा नहीं की जाती थी, जैसा कि अक्सर मूर्ति पूजक पूजा में होता था, बल्कि जानवर की बलि मनुष्य के लाभ के लिए दी जाती थी, क्योंकि यहोवा जानवरों का मूल्य मनुष्यों से कम मानता है।
पद 3 और 4 में हमें उन जानवरों और अनाज की सूची मिलती है जिन्हें इस विशेष उद्घाटन बलिदान में इस्तेमाल किया जाना है, और हमें इस विशेष अनुष्ठान के उद्देश्य के बारे में भी उत्तर मिलता है, जो भविष्य के मानक दैनिक बलिदान अनुष्ठानों से थोड़ा अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज प्रभु तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। वास्तव में यह कहता है कि आज यहोवा तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण अवसर है, और पद 6 में यहोवा के उनके सामने प्रकट होने की अवधारणा को थोड़ा और परिष्कृत किया गया है। यह यहोवा की महिमा या उपस्थिति है जो इज़राइल के सामने प्रकट होगी। यह प्रभु का काव्योद है। बात यह है, इज़राइल पहले से ही यह समझने लगा था कि तंबू में यहोवा की उपस्थिति के बिना तंबू कुछ भी नहीं था, बल्कि एक बहुत महंगा तंबू था, और कभी कभी यहोवा की उपस्थिति वहां होती थी और कभी कभी नहीं होती थी। इसलिए इज़राइल हमेशा तंबू को भरने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति की बड़ी प्रत्याशा में रहता था। आइए एक पल के लिए इस बारे में सोचें और इसे अपने जीवन में लागू करें। हमारे भीतर यहोवा की उपस्थिति के बिना एक इंसान क्या है? हमारे अंदर पवित्र आत्मा के बिना हम क्या हैं? एक महंगे तंबू के अलावा कुछ नहीं, एक खाली खोल जो किसी दिव्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। और तंबू की तरह कुछ अन्य की तुलना में सुंदर होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर वे बस रहने की जगह हैं। एक व्यक्ति सभी सही चीजें कर सकता है, नैतिक, ईमानदार, दयालु, उत्पादक, दानशील हो सकता है, जिसे दुनिया वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति कहेगी, लेकिन शानदार फर्नीचर, कीमती धातुओं और सुंदर कला से भरे तंबू की तरह यह वास्तव में कोई दिव्य उद्देश्य पूरा नहीं करता है, जब तक कि परमेश्वर वहां मौजूद न हो। ओह, यह देखने में निश्चित रूप से सामान्य बकरी के बालों से बने तंबू की तुलना में काफी शानदार था जिसमें औसत इजरायली रहते थे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति के बिना उस शानदार तंबू का कोई मूल्य नहीं था, जितना कि उन सभी अन्य सामान्य धूल भरे बदबूदार तंबू का था। आज आप परमेश्वर के चुने हुए तंबू हैं, उसका सांसारिक तंबू। इस दुनिया में सभी खाली परे देह के तंबुओं के लिए प्रार्थना करें, सुंदर और सादे आपके समुदाय में, शायद आपके परिवार में भी, और निश्चित रूप से इज़राइल में उन लाखों खाली तंबुओं के लिए। पद 7 में वेदी के समीप जाओ शब्दों के साथ मूसा आधिकारिक रूप से पुरोहिती अनुष्ठानों का प्रशासन हारून को सौंप देता है, और हम इज़राइल के इतिहास में एक नए युग में प्रवेश करते हैं। उनके पास एक पुरोहिती है। हारून द्वारा की गई पहली भेंटें स्वयं और उसके पुत्रों की ओर से हैं। यह एक सार्वजनिक स्वीकारोक्ति है कि याजकों के भीतर भी पाप होता है। यह एक विनम्र अनुभव रहा होगा, और हम विशिष्ट औलाह होम बलि का प्रदर्शन देखते हैं। इसके बाद पद 15 में हारून अब इज़राइल के लोगों की ओर से बलिदान चढ़ाता है। ध्यान दें कि यह एक बकरा था जिसे लोगों की ओर से बलिदान किया गया था। याजकों के लिए एक युवा बैल और लोगों के लिए एक बकरी क्यों? क्योंकि याजकों का पाप लोगों के पाप से अधिक महत्वपूर्ण है। हमने कई बार इस बारे में बात की है कि परमेश्वर पापों को कैसे वर्गीकृत करते हैं। कुछ अधिक गंभीर होते हैं ने पापों के विभिन्न वर्गीकरणों के लिए जानवरों का एक पदानुक्रम भी स्थापित किया, मतलब दूसरों की तुलना में अधिक खतरनाक होते हैं। और कैसे बलि प्रणाली सबसे गंभीर पाप के प्रायश्चित के लिए परिपक्व बैल सबसे मूल्यवान है और पक्षी सबसे कम मूल्यवान है, जबकि हमें इस पर बारीकी से ध्यान देना चाहिए। तोरह में हमें जो ईश्वर की मूलभूत शिक्षा मिलती है, उसका उद्देश्य यह नहीं है कि हम दूसरों के पापों की तुलना अपने पापों से करें और तय करें कि कौन सा पाप अधिक बुरा है। यह इसलिए है ताकि हम पाप की बहुआयामी प्रकृति को देख सकें, यह कैसे उन लोगों को प्रभावित और संक्रमित कर सकता है जो पाप के संपर्क में आते हैं।
पाप कितना गंभीर और विनाशकारी है और यह इतना सरल और सीधा मामला नहीं है जितना हमें अक्सर सिखाया जाता है। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे हमेशा थोड़ी परेशानी होती थी जब कोई उपदेशक कहता था कि ईश्वर के सामने सभी पाप एक समान हैं, कि कोई छोटा या बड़ा पाप नहीं है। ईश्वर की नजर में कैंडी बार चुराना हत्या से अलग नहीं है, क्योंकि दोनों ही पाप हैं और ईश्वर कोई भेद नहीं करता। खैर, यह तोरह में कही गई बात के बिल्कुल विपरीत है। आइए हम संत पौलुस द्वारा नया नियम में बताई गई बातों को लेकर भ्रमित न हो कि सब भाई ने पाप किया है और ईश्वर की महिमा से रहित है। बनाम लैव्य व्यवस्था में पाप के बारे में हम बार बार जो देखते हैं, संत पौलुस हमारे भ्रष्ट स्वभाव और उसके अपरिहार्य परिणाम के बारे में बात कर रहे हैं। यह असंभवता कि वह स्वभाव कभी भी ईश्वर को स्वीकार्य हो सकता है, और इसलिए ऐसा कोई इंसान कभी नहीं हुआ यीशुआ को छोड़कर जिसने भ्रष्ट स्वभाव के कारण कम से कम एक छोटा सा पाप न किया हो। इसलिए इस संदर्भ में सभी लोग एक ही नाव में सवार हैं। लैव्य व्यवस्था की बलिदान प्रणाली उस सिद्धांत को प्रदर्शित करती है जिसके बारे में पौलुस बात कर रहा है, ओलाह और मिंचाह बलिदान के माध्यम से, जिसे पूरे इसराइल के लिए दैनिक आधार पर किया जाना चाहिए। याजक वर्ग सहित किसी को भी छूट नहीं है।
फिर भी मनुष्य की प्रकृति मनुष्य के व्यवहार से अलग मुद्दा है जिसे बलिदान प्रणाली भी प्रदर्शित करती है। पापों के विभिन्न वर्गीकरण और प्रत्येक वर्ग के लिए प्रायश्चित करने के लिए आवश्यक बलिदान अनुष्ठान व्यवहार, इरादे और समाज में एक व्यक्ति की स्थिति से संबंधित है। दूसरे शब्दों में कहें तो संत पौलुस अपने इस कथन में कि सभी मनुष्यों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, हम कौन हैं इसके बारे में अधिक बात कर रहे हैं और हम क्या करते हैं इसके बारे में कम।
और हम जो हैं वह ईश्वर की नजर में सभी मनुष्यों में एक समान है, यानी हम सभी पापी स्वभाव से पैदा होने के लिए समान रूप से दोषी हैं, कोई अपवाद नहीं। हम जो करते हैं वह बिल्कुल अलग मामला है। ईश्वर कैंडी बार चुराने को हत्या के बराबर नहीं मानता, ईश्वर झूठ बोलने को व्यभिचार करने के बराबर नहीं मानता। हम जो करते हैं वह वास्तव में हमारे कुछ कार्यों को कम गंभीर अपराध और अन्य को घृणास्पद कहा जाता है, और हमें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा क्या है। तोरह हमें यह सब विस्तार से बताता है। हमें यह समझना चाहिए कि भले ही पापों का वर्गीकरण आज भी प्रभावी है, यानी वास्तव में अधिक गंभीर और कम गंभीर अवज्ञाएं हैं, इन विभिन्न अवज्ञाकारी व्यवहारों में से प्रत्येक के प्रायश्चित के लिए आवश्यक बलिदान को घटाकर केवल एक कर दिया गया है, यीशु का खून। और यह वही बलिदान है जो हमारे स्वभाव के लिए प्रायश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। यीशु के खून ने हर बलिदान प्रक्रिया को बदल दिया है। वह एकमात्र अधिकृत प्रायश्चित है, लेकिन यह तथ्य कि पाप पूर्ण व्यवहार अधिक या कम गंभीर हो सकता है, परमेश्वर के लिए अधिक या कम अपमानजनक हो सकता है, और विश्वासियों के समुदाय के लिए अधिक या कम खतरनाक हो सकता है, यह बना हुआ है। इस विशेष उद्घाटन समारोह के सबसे मार्मिक क्षणों में से एक वह रहा होगा जो पद 22 में दर्ज है। हारून ने लोगों के ऊपर अपने हाथ उठाए और उन्हें आशीर्वाद दिया। हालांकि हमें इस बिंदु पर यह नहीं बताया गया है कि क्या शब्द बोले गए थे। सिफरा, उसके बाद राशि और कुछ अन्य महान इब्रानी संतों का कहना है कि हारून ने जो आशीर्वाद दिया वह वही है जो संख्या 6 का 22 से 27 में दर्ज है। एक क्षण रुकें और कल्पना करें कि आप लोगों के एक समुद्र में हैं, प्राचीन रेगिस्तान के जंगल में। शुष्क हवा धूल के छोटे छोटे भंवरों को उड़ा रही है और माउंट एवरेस्ट के तल पर घाटी है। सिनाई एक प्राकृतिक मेगाफोन की तरह काम करता है जो हारून की आवाज को बढ़ाता है। जलते हुए जानवरों के मांस की गंध के साथ गारहा धुआं पीतल की वेदी से ऊपर की ओर उठ रहा है, और हारून अपने शानदार उच्च पुजारी के वस्त्रों में अनुष्ठान को रोकता है, आपकी ओर कदम बढ़ाता है, अपने हाथ उठाता है और ब्रह्मांड के परमेश्वर की ओर से आप पर यह आशीर्वाद देता है। गिनती 6:24, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। 25,
यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। 26, यहोवा अपना मुख तुझ पर दिखाए और तुझे शांति दे। इसके साथ ही मूसा और हारून तंबू में प्रवेश कर गए और यहोवा की उपस्थिति सभी लोगों के सामने प्रकट हुई। परमेश्वर ने अपनी प्रसन्नता और स्वीकृति की पुष्टि की, जो कुछ भी उसके निर्देशों और आदेशों के अनुसार सख्ती से किया गया था। दिव्य आग भेजकर और उस समय पीतल की वेदी पर पहले से ही सुलग रही सभी चीजों को भस्म करके और इस तरह पीतल की वेदी के चरित्र को केवल महिमामय से दिव्य में बदलकर पुष्टि की। भीड़ में अचरज की लहर दौड़ गई। लोगों के घुटने कमजोर हो गए क्योंकि वे जो कुछ भी देख रहे थे उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। सहज प्रतिक्रिया में वे भय, सम्मान और सभी चीजों के पिता के प्रति कृतज्ञता से अपने चेहरे के बल गिर पड़े। वह कैसा दिन था! बहुत दूर नहीं भविष्य में यरूशलेम में तीसरे मंदिर के पुनर्निर्माण के साथ एक बहुत ही समान घटना घटेगी और मुझे संदेह है कि यह बहुत ही समान प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगी।
आइए लैव्य व्यवस्था 10 की ओर चलें। लैव्य व्यवस्था अध्याय 10 पूरा पढ़ें।
अध्याय 10 थोड़े समय के लिए एक दिलचस्प मोड़ लेता है। इसकी शुरुआत हारून के दो बेटों नादाव और अबीहू की चौंका देने वाली और भयावह कहानी से होती है, जिन्हें यहोवा ने उसके खिलाफ अपराध करने के कारण मार डाला। हम उनकी मृत्यु और उसके कारण को बहुत सावधानी से देखेंगे, क्योंकि 1300 साल बाद एक ऐसी ही घटना घटेगी और यह भी शास्त्रों में दर्ज है। सबसे पहले, हालांकि, हमें पीछे हटकर इस अध्याय को व्यापक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है और यह समझना चाहिए कि कई मायनों में यह हमारे द्वारा सीखी गई बहुत सी बातों को एक साथ लाता है। अब तक लैव्य व्यवस्था ने मुख्य रूप से प्रत्येक के लिए सावधानी पूर्वक परिभाषित उद्देश्यों के लिए बारीक विस्तृत अनुष्ठानों की लंबी सूची बनाकर हमें चुनौती दी है। सभी पाप के मामलों से जुड़े हैं और पैमाने के दूसरे छोर पर पवित्रता। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों के लिए लैव्य व्यवस्था का हमारा अध्ययन कठिन से लेकर कुछ हद तक उबाऊ रहा होगा, लेकिन ठीक उसी तरह जब हम पेड स्कूल में थे और पहली बार बुनियादी अंक गणित सीख रहे थे, किसी भी तरह से कोई अर्थ निकालने या किसी भी तरह का उपयोगी व्यावहारिक अनुप्रयोग शुरू करने से पहले नियमों, यादों और नई अवधारणाओं और सिद्धांतों की एक पूरी श्रृंखला से गुजरना आवश्यक है। मैं पाठ्यक्रम जारी रखने के लिए आपकी सराहना करता हूं, यह फल देने वाला है। कई साल पहले एक वयस्क संडे स्कूल क्लास में मैं पढ़ा रहा था। यहोवा के चरित्र के एक खास पहलू की जांच करना जरूरी हो गया था और वह पहलू था न्याय करने, सजा देने और जरूरत पड़ने पर नष्ट करने की उसकी इच्छा। हमारे प्रभु के इन गुणों के बारे में शिक्षा देने के कुछ समय बाद एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी के साथ नियमित रूप से इस क्लास में आता था ने अपना हाथ उठाया और एक संक्षिप्त टिप्पणी की जो कुछ इस तरह थी, मैं चर्च में परमेश्वर के न्याय के बारे में सुनने नहीं आता, मैं उनके प्यार के बारे में सुनने आता हूं। मेरा परमेश्वर प्यार है और मुझे बस इसी में दिलचस्पी है। वह हमारे साथ उसका आखिरी रविवार था, वह कभी वापस नहीं आया। उनकी प्रतिक्रिया ने मुझे चौंका दिया और मैंने कई हफ्तों तक इसके बारे में सोचा। इसने मुझे इस वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया कि वास्तव में हमारा परमेश्वर कई विरोधाभासों का परमेश्वर है, और इसीलिए जब हम पवित्र शास्त्र, पुराने नियम या नए नियम को पढ़ते हैं तो हम उनके अविश्वसनीय प्रेम और दया के बारे में पढ़ सकते हैं, जो हमारे लिए अपने बेटे को एक यातनापूर्ण मौत मरने की अनुमति देगा, जबकि अन्य पृष्ठों पर हम पूरी दुनिया के विनाश के बारे में पढ़ते हैं, एक फिरौन की जिद के कारण सैकड़ों हजारों मिस्रियों को मार डाला और एक सोने का बछड़ा बनाने के लिए हजारों इसराइलियों को मारने का आदेश दिया। यह व्यक्ति जो ईश्वर के न्याय के गुण पर शिक्षा देने के कारण मुझसे बहुत नाराज था, आधुनिक चर्च के एक अच्छे हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, जो ईश्वरीय प्रतिशोध के बाइबल के दृष्टिकोण को एक तरफ रखकर कुछ अधिक गर्मजोशी और मधुरता के पक्ष में रहना पसंद करता है। जैसा कि मैंने किसी न किसी रूप में उपदेशों को कई बार सुना है, जितना मुझे याद है, ईश्वर हमें हमेशा क्षमा करेगा, यह उसका काम है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह धारणा कि पुराने नियम के कथित सख्त और न्याय करने वाले ईश्वर ने नए नियम के सहिष्णु और दयालु ईश्वर को रास्ता दे दिया है, आधुनिक और प्रगतिशील धर्मशास्त्र है। बमुश्किल एक सदी पहले के विद्वान बाइबल विद्वानों की शिक्षाओं की जांच करें और आप उचित उपासना को लेकर बहुत चिंता देखेंगे, और यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर आत्म परीक्षण कि हम अपने प्रभु के प्रति पवित्रता और आज्ञाकारिता के लिए प्रयास कर रहे हैं, और यह अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचने के लिए या इससे भी बदतर यहोवा के आशीर्वाद को खोने से बचने के लिए है। आज हम ईश्वर के न्याय के विषय पर उपदेशों का वर्णन नरक की आग और अभिशाप के रूप में करते हैं, और अधिकांश पादरी अब इसे 10 फुट डंडे से भी नहीं छूते। क्यों? क्योंकि 21वीं सदी के ईसाई इसे सुनना नहीं चाहते। सच तो यह है कि विश्वासियों के रूप में हमें दिन रात पाप पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, न ही हमें यहोवा के खिलाफ किसी काल्पनिक अपराध के बारे में चिंता और सोच में जीवन जीना चाहिए जिसे हम वास्तव में पूरी तरह से पहचान नहीं पा रहे हैं, या शायद हमारे द्वारा किए गए किसी गंभीर पाप के बारे में जिसे हम संभवतः इतना भयानक मानते हैं कि यीशु का खून भी प्रायश्चित नहीं कर सकता। परमेश्वर के क्रोध से बचने की इच्छा, उसका नरक में अनंत काल तक रहने की सजा तथा गलती के प्रति आज्ञाकारी बने रहने से रुग्ण आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति पैदा हुई जो मध्य युग में बहुत प्रचलित हो गई। आत्म क्षति के साथ साथ घंटों तक चलने वाली लंबी प्रार्थनाएं तथा उस व्यक्ति के भीतर विद्यमान प्रत्येक कथित छाप, वास्तविक या काल्पनिक, की स्वीकारोक्ति विशेष रूप से धर्मनिष्ठ लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई। यह सब जितना भी असंतुलित था, यह उससे कहीं अधिक असंतुलित नहीं है जहां आधुनिक ईसाइयों का बड़ा हिस्सा पहुंच गया है। यह है कि हमें अपने परमेश्वर से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसके बेटे यीशुआ के प्रति वफादारी स्वीकार की है। इसलिए हमारी सभी अवज्ञा और लापरवाह, पूजा और तुच्छ जीवन शैली का जवाब सर्वशक्तिमान की ओर से दादाजी की तरह इशारा करके दिया जाएगा। विचार यह है कि अब जब हमने मोक्ष के रूप में अपना अग्नि बीमा खरीद लिया है, तो हम दुनिया की परवाह किए बिना अपने अग्निरोधी सूट में माचिस से खेल सकते हैं। खैर, मैं आन को पुराने नियम और नए नियम दोनों से उदाहरण दिखाकर इस तरह की खतरनाक सोच और झूठे धर्मशास्त्र पर लगाम लगाने की उम्मीद करता हूं कि यहोवा ने अपने विश्वासियों द्वारा अवज्ञा करने पर किस तरह से कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैं कुछ ऐसे उदाहरणों का उपयोग करूंगा जिनके बारे में हम सभी ने पहले सुना है, लेकिन क्योंकि हमारे पास उचित पृष्ठभूमि और संदर्भ नहीं था, इसलिए इच्छित सिद्धांत और सबक अस्पष्ट हो गए थे। सबसे पहले आइए नदाव और अवीहू की कहानी की जांच करें, जो लैव्य व्यवस्था अध्याय 10 की पहली कुछ आयतों में बताई गई है। फिर हम इसकी तुलना हनन्याह और सफीरा के नया नियम खाते से करेंगे, जैसा कि प्रेरितों के काम 5 में बताया गया है। दोनों मामलों में समान तथ्य यह है कि यहोवा ने इन लोगों की जान इसलिए ले ली क्योंकि उन्होंने उसका अपमान किया था। दोनों मामलों में यह विश्वासियों से जुड़ा है। वास्तव में नदाव और अवीहू पुजारी थे, हनन्याह और सफीरा यीशु के शुरुआती शिष्य थे, और दोनों मामलों में अपराध सतही तौर पर प्रोटोकॉल के उल्लंघन से ज्यादा कुछ नहीं लगते। शायद ही कोई ऐसी चीज की उम्मीद करे जो एक ईश्वर जो जीवन, प्रेम और दया को इतना अधिक महत्व देता है, वह मृत्यु दंड की सजा सुनाए। अध्याय 10 की पहली आयत हमें हारून के सबसे बड़े पुत्रों नदाव और अवीहू से परिचय कराती है। हारून अब इसराइल का पूर्ण रूप से समर्पित महायाजक था और नदाव और अवीहू पूर्ण रूप से समर्पित सामान्य पुजारी थे। वास्तव में पारिवारिक उत्तराधिकार की सामान्य रेखा के कारण हारून की मृत्यु के बाद नदाव संभवतः अगला महायाजक होता। हमें बताया गया है कि नदाव और अवीहू ने अपना अपना अग्निपात्र लिया, आपकी बाइबल में सेंसर लिखा हो सकता है, जो कि गर्म कोयले के छोटे ढेर को ले जाने के लिए बनाया गया एक बर्तन है। उस पर धूप बत्ती लगाई धुआं बनाने के लिए, और फिर उन्होंने इसे यहोवा को तंबू के अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में अर्पित किया।
लेकिन एक समस्या थी, उन्होंने यहोवा को जो अर्पित किया उसे शास्त्रों ने विदेशी या अजीब आग कहा। इसके अलावा वे जो कुछ भी कर रहे थे वे उसे अपने हिसाब से बना रहे थे, ये ऐसा कुछ नहीं था जो परमेश्वर ने निर्धारित किया था।
अचानक एक बहुत ही तथ्यात्मक लहजे में हम देखते हैं कि प्रभु ने आग उगल दी और नादाव और अवीहू को जलाकर राख कर दिया, उन्हें तुरंत मार डाला उनका अपमान करने के कारण। तुरंत मूसा हारून की ओर मुड़ता है और उसे जो कुछ हुआ उसका कुछ रहस्यमयी विवरण देता है, मूल रूप से यह कहते हुए कि हारून के सुलगते बच्चों ने जो किया वह यहोवा की पवित्रता का बहुत बड़ा अपमान था और इसलिए इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, विशेष रूप से पुरोहित वर्ग के नेताओं द्वारा जिन्हें बेहतर तरीके से पता होना चाहिए।
आइए कुछ मिनटों के लिए इसका विश्लेषण करें, क्योंकि इसे समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका यहोवा कौन है इससे सब कुछ लेना देना है।
सबसे पहले जिसे आम तौर पर आग के रूप में अनुवादित किया जाता है वह इस आग को संदर्भित करता है जिसे नादाव और अवीहू ने अपने सेंसर में डाला था, इब्रानी में ऐश है और इसका मतलब है गर्म अंगारे। इसलिए उन्होंने अपने सेंसर अपने आग के बर्तनों में गर्म अंगारे डाले, न कि थोड़ी सी जलती हुई आग। इसके बाद हमें बताया गया कि यह एक विदेशी आग या अजीब आग थी जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया। इब्रानी में यह ऐश जराह है और यह वास्तव में धूप को संदर्भित करता है, ना कि आग को। इसलिए इस वाक्यांश का थोड़ा और सटीक अर्थ जिसे आम तौर पर अजीब या विदेशी आग के रूप में अनुवादित किया जाता है, हो सकता है यहोवा को लाए थे उसमें कुछ गड़बड़ या दोषपूर्ण था।
आग द्वारा विदेशी धूप की भेंट, इसका महत्व यह है कि जो भेंट वे, अब सच तो यह है कि महान और प्राचीन इब्रानी संतों और आधुनिक विद्वानों के बीच इस बात पर कोई सार्वभौमिक सहमति नहीं है कि इस अग्नि द्वारा विदेशी धूप बलि के दोष की सटीक प्रकृति क्या थी जिसके कारण हारून के इन दो बेटों की मृत्यु हुई। सिफ्रा में, जो मूल रूप से लैव्य व्यवस्था पर एक टिप्पणी है, कई सुझाव दिए गए हैं जो इस विषय पर कुछ प्रकाश डालते हैं, और संभवतः समग्र रूप से देखा जाए तो ये सुझाव हमें यहां जो हुआ उसकी सबसे अच्छी तस्वीर देते हैं। अपराध की प्रकृति इस तथ्य से शुरू होती है कि ये दोनों व्यक्ति नियुक्त पुजारी थे, वे अपने विशेषाधिकार के पर्दों के कारण विशेष रूप से ईश्वर के करीब थे, या इब्रानी भाषा में कहें तो वे ईश्वर के निकट थे, और निहितार्थ से उन्होंने जो भी गलत किया उन्हें बेहतर तरीके से पता होना चाहिए था और इसलिए उनके पास कोई बहाना नहीं था। कुछ अवसरों पर मैंने आपको शौकेन बाइबल नामक एक अनुवाद से पीआरएच कर सुनाया है। यह बहुत ही शाब्दिक शब्द दर शब्द अनुवाद है और परिणाम स्वरूप इसे समझना कठिन हो सकता है। इसमें एक बहुत ही विशिष्ट शब्द या वाक्यांश था जिसे मंदिर में बलि और यहोवा के सामने लाए जाने वाले संबंधित अनुष्ठानों और उन्हें लाने के लिए अधिकृत लोगों का उल्लेख करते समय अक्सर दोहराया जाता था। इब्रानी में इसे किरवा कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे निकट कहा जाता है। क्योंकि यह विशेष रूप से कुछ बलिदानों को संदर्भित करता है इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ निकट बलि है। तो इसका मतलब क्या है? सरलतम अर्थ में निकट का क्या अर्थ है? पास पास, बगल में समीपवर्ती। निकट का अर्थ है दूर। निकट संबंधी वह होता है जो वंशावली के अनुसार आपका निकट होता है, एक करीबी रक्त संबंधी। इसलिए निकट का अर्थ निकट संबंध या निकटता हो सकता है। पुजारी परमेश्वर के साथ संगति में उसके निकट थे, दोनों अर्थों में कि वे उसके अलग अलग सेवक थे जिन्हें ऐसे कर्तव्य दिए गए थे जिन्हें करने की अनुमति केवल उन्हें ही थी, और उन्हें परमेश्वर के सांसारिक निवास स्थान तबरनकल अभयारण्य में प्रवेश करने की अनुमति देकर उसके निकट होने का विशेष अधिकार दिया गया था।
इसलिए एक सिद्धांत के रूप में हम पूरे शास्त्र में पाते हैं कि जो कोई भी परमेश्वर के निकट है उसे उन लोगों की तुलना में उच्च मानक पर रखा जाता है जो नहीं है। कारण सरल है, आप केवल तभी प्रभु के निकट हो सकते हैं जब वह आपको ऐसा महान विशेष अधिकार देता है। इसलिए एक सामान्य अर्थ में नादव और अवीहू के पास गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि वे परमेश्वर के विशेषाधिकार प्राप्त निकट सेवक थे। वे उसके सबसे करीब थे। और परमेश्वर की पवित्रता के जितना करीब कोई होता है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी वह लेता है, क्योंकि उसकी पवित्रता को दूषित करने का खतरा उसके साथ अपने आप ही आ जाता है। बार बार यीशु ने चेतावनी दी कि व्यवस्था के शिक्षक जो लोगों को शास्त्र की सच्चाई के बजाय झूठे सिद्धांत सिखाते हैं, उन्हें उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं जो जानते तक नहीं थे। नादाव और अबीहू के अपराध की वास्तविक प्रकृति क्या थी, फिर से हम पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं। हालांकि दो उल्लंघन सबसे अधिक संभावित लगते हैं। एक यह है कि संभवतः वे तंबू अभयारण्य में प्रवेश कर गए और जहां उन्हें जाने की अनुमति थी उसे आगे चले गए। पुजारी सामने के कमरे में प्रवेश कर सकते थे जिसे पवित्र स्थान कहा जाता था, लेकिन केवल उच्च पुजारी को पीछे के कमरे में जाने की अनुमति थी जिसे परम पवित्र स्थान कहा जाता था। मूसा के जीवन काल के दौरान उनकी विशिष्ट स्थिति के कारण मूसा को महायाजक हारून की तुलना में अधिक बार परम पवित्र स्थान में जाने की अनुमति थी, लेकिन मूसा की मृत्यु के बाद परम पवित्र स्थान में प्रवेश के नियमों को और अधिक सख्ती से लागू किया गया और उच्च पुजारी केवल वर्ष में एक बार योम किप्पुर पर उस कमरे में जा सकते थे। यह अनुमान कि हारून के दो बेटों ने परम पवित्र स्थान में अतिक्रमण किया और ऐसा करने के लिए उन्हें मृत्यु दंड दिया गया, परमेश्वर द्वारा मूसा को उसके भाई हारून के बारे में दी गई चेतावनी से पुष्ट होता है। हम उस चेतावनी को लेव्य व्यवस्था 16 में पाते हैं। मैं इसे आपके लिए उद्भूत करता हूं। लेव्य व्यवस्था 16 का एक, हारून के दो बेटों की मृत्यु के बाद यहोवा ने मूसा से बात की जो यहोवा के पास आने पर मर गए। 2, यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कहो कि जब चाहे तब वह संदूक पर प्रायश्चित के ढक्कन के सामने पर्दे के पीछे परम पवित्र स्थान में न आए, अन्यथा यह मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर बादल में प्रकट होता हूं। नदाव और अबीहू पर परमेश्वर के न्याय का दूसरा सबसे संभावित कारण यह है कि उन्होंने निर्गमन 30 पद 9 में बताए गए आदेश का उल्लंघन किया।
निर्गमन 30:8, और जब हारून गोधूली के समय दीपक ठीक करे तब वह धूप जलाए, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के सम्मुख नित्य धूप जलाया जाए। 9, इस वेदी पर तुम कोई और धूप होम बलि अन्न बलि न चढ़ाना और न इस पर अर्घ चढ़ाना।
अतः इस घटना की जांच के मध्य बिंदु पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के निकट होने का महान सौभाग्य बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ खतरा भी लाता है, और जब उस जिम्मेदारी को समाप्त कर दिया जाता है तो सामान्य से भी अधिक परिणाम सामने आते हैं।
अब कल्पना करें कि क्या आप कर सकते हैं। यहां हारून और उसके दो बेटे पुजारी बनने के बाद से पहली बार बलिदान की रस्में निभा रहे हैं, तंबू के चारों ओर मौजूद बुजुर्गों के सामने, और इस महत्वपूर्ण घटना की एक झलक पाने के लिए आसपास की पहाड़ियों पर चढ़े लाखों इसराइलियों के सामने परमेश्वर ने अपनी नाराजगी में आग उगल दी, जिसने तुरंत हारून के पहले और दूसरे जन्मे बेटों का दाह संस्कार कर दिया। भीड़ जितनी स्तब्ध रही होगी, बेचारे हारून के बारे में क्या कहा जाए जिसने अभी अभी अपने सबसे बड़े दो बेटों की सबसे भयानक तरह की मौत देखी थी। हाँ, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप आराधनालय या चर्च में हैं और आप अपने दो बच्चों के साथ प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के वे आग में झलकर मर जाते हैं। हारून के दिमाग में क्या चल रहा था? उसका दुख और सदमा बहुत ज्यादा रहा होगा, उसका डर और आतंक दूसरे नंबर पर रहा होगा। यहां क्या हुआ, यहोवा ने ऐसा क्यों किया?
अगली बार जब हम मिलेंगे तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे।